Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hanta chen manyate hantum, hatas chen manyate hatam. उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्माशि जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्सादान् महिमानमात्मनः आत्मा न मरने वाला होता है न मारने वाला। जो व्यक्ति आत्मा को मरने वाला और मारने वाला समझता है वो व्यक्ति अज्ञानी है। वह आत्म तत्व को नहीं जानता है। आत्मा यदि मनन क्रिया का मारण क्रिया का करता हो या मरण क्रिया का करता, यदि उसमें मारण क्रिया का कर्तृत्व है तो आत्मा मारने वाला बनेगा। मारना भी एक क्रिया है। मारना माने शब्द को पैदा करने वाला संबंध है। दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक शब्द को पैदा करने वाला और दूसरा शब्द को नहीं पैदा करने वाला। हमारे दो अंगुलियों का जो संबंध है इससे कोई शब्द पैदा नहीं होता है, लेकिन जब हम ताली बजाते हैं तो शब्द पैदा होता है। तो जहां पर आभिघात, आभिघात का मतलब होता है शब्द को पैदा करने वाला संबंध। मारने वाला व्यक्ति जब वो किसी को मारना चाहता है तो आघात करता है, और वो आघात माने शब्द को पैदा करने वाला आघात, चोट जिसको आप बोलते हैं। लेकिन पहली बात, आत्मा में क्रिया हो और वो आत्मा की क्रिया जिसको मारना है उसमें पहुंच जाए, तब जाके हम उसको मार सकते हैं। यहां दोनों बातें संभव नहीं, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है। अविक्रिय विज्ञान घन व्यापक। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अविक्रियत्वात् आत्मनः तथा न हन्यत आकाशवत अविक्रियत्वाद। आकाश की तरह वो अविक्रिय माने उसको कितना भी हिलाओ तो वो हिलता नहीं है, उसको कितना भी कोशिश करो लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं। आप ध्यान देना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। आप किसी भी चीज को तब तक नहीं मिटा सकते जब तक उसके अंदर क्रिया ना हो। एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, बड़ा मजेदार उदाहरण है। हम लोग इस उदाहरण से शिक्षा भी ले सकते हैं। एक कोई महात्मा थे, एक गांव में रहते थे। उसी गांव में कोई एक पहलवान आया और उसने चुनौती दी लड़ने की। अब उसी पूरे एरिया में सूचना पहुंच गई कि अमुक पहलवान आया है, उसने चुनौती दी है, लड़ने की चुनौती दी। अब पुराना जमाना था और उसने कहा कि पूरे गांव वाले लिख दो कि मैं जीत गया, या तो लड़ो। गांव में महात्मा जी थे, वो भी पहलवान, भजन करते थे, साधना करते थे। एक कुटिया थी छोटी सी, बड़े मस्त साधु थे। बहुत तपस्वी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि मेरे गांव की इज्जत है, मैंने भिक्षा खाई है गांव में और मैं इस गांव को परास्त नहीं होने दूंगा। महात्मा ने कहा कि तुम मेरे को हरा नहीं सकते हो। पहलवान को भी लगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पहलवान, इन्होंने कैसे चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन वो महात्मा थे, उनको भी लगा क्या पता। घोषणा हो गई कि महात्मा जी उस पहलवान के साथ लड़ेंगे और महात्मा ने आश्वस्त किया उस पूरे गांव के लोगों को कि ये पहलवान कितना भी बड़ा हो मेरे को परास्त नहीं कर सकता है, तुम लोग निश्चिंत रहो। जब तय हुआ समय लड़ने का, स्थान तय हुआ, हजारों लोग एकत्रित हो गए। आज साधु के साथ एक पहलवान लड़ने वाला है। आज आश्चर्य की बात, दो पहलवान नहीं लड़ रहे हैं, एक पहलवान और दूसरा साधु लड़ रहा है। बड़ी बात है। लोगों को भी आश्चर्य था कि अब ये मुकाबला बहुत मजेदार होने वाला है। हजारों की संख्या में लोग देख रहे थे, साधु को मानने वाले भी लोग थे, बहुत मानने वाले। दोनों पहलवान बीच में आ गए और सीटी बजा दी गई, सूचना दी गई, अब लड़ना शुरू हो गया है। और जैसे हाथ में हाथ मिला दिया पहलवानों ने, और वैसे ही महात्मा जी बड़े मजेदार, महात्मा जी लेट गए, चित लेट गए, जमीन पर चित लेट गए और उन्होंने कहा कि मेरे को हरा दो। उस पहलवान ने कहा कि उठो लड़ो मेरे साथ, फिर मैं हराऊंगा। बोले वो शर्त तो थी नहीं तुम्हारी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे को लड़ाओ, मेरे को हराओ, तुम मेरे को हराओ। महात्मा ने कहा मूर्ख, तेरे से मैं लड़ूंगा तब मैं हारूंगा ना। यदि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा ही नहीं तो तुम मेरे को कैसे हराओगे। हार और जीत उसकी होती है जो लड़ता है, और जो लड़ता ही नहीं है उसकी न हार है और न उसकी जीत है। अभी हम लोग भी ना घर में या तो हारते हैं या तो जीतते हैं। अपने को मालूम पड़ता है कि भैया हम यहां हार रहे हैं, और वो अहंकार पर चोट लगती है, अरे बच्चे हमको हरा रहे हैं, मैंने बात नहीं मान रहे हैं, घर के लोग हमको हरा रहे हैं। हमें इसलिए लगता है, हारने का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम लड़ते हैं। महात्मा ने कहा कि मैं लड़ता ही नहीं तो कौन हराएगा मेरे को। बोले लिख कि महात्मा को मैं हरा नहीं सकता हूं। उस पहलवान को लिख के देना पड़ा कि महात्मा को मैं हरा नहीं पाया। बात ऐसी है। और ये लड़ना लड़ना क्या है, क्रिया है। लड़ना जो है ना ये विरोधी क्रिया है, दूसरे को नष्ट करने की क्रिया है, हावी होने की क्रिया है। ये दूसरे पर हावी होने की जो क्रिया है यही तो लड़ाई है। और इस क्रिया का आधार बने बिना न वो लड़ सकता है, और बिना लड़े न वो जीत सकता है और न वो हार सकता है। इसलिए क्रिया का कर्ता बने बिना न कोई मर सकता है और न कोई मार सकता है। बात यहां पर यही तो कह रहे हैं, हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हंती न हन्यते। आत्मा न हनन क्रिया का करता है और न वो मरण क्रिया का करता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा अविक्रियत्वात् आकाशवत्, आकाश की तरह अविक्रिय होने के कारण आत्मा न मरता है और न वो मारता है। ऐसी बहुत सारी चीजें संतों के जीवन में दिखाई देती हैं। चाहे आप उड़िया बाबा जी महाराज देखो, चाहे मां आनंदमयी, वर्तमान के सिद्ध महापुरुष परम पूज्य महाराज श्री, वो अपने से अलग कुछ देखते ही नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज को गुरु मानते थे, परम पूज्य महाराज श्री, और परम पूज्य महाराज श्री कहते थे कि ऐसा ज्ञान मैंने कहीं नहीं देखा। और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिया करते थे उड़िया बाबा जी महाराज, बहुत अद्भुत। परम पूज्य महाराज श्री जब उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने सोचा कि मैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, बाबा को चुप करूंगा। एक प्रश्न लेके गए, पुनर्जन्म किसका होता है? महाराज जी के मन में तर्क थे, पुनर्जन्म किसका होता है मैं पूछूंगा, यदि आत्मा का बोलेंगे तो आत्मा में तो होता ही नहीं पुनर्जन्म, शरीर का बोलेंगे तो शरीर का तो होता नहीं, शरीर तो ही मर जाता है, पुनर्जन्म किसका होता है? बहुत सारे तर्क लेके गए। तो बाबा ने उसका उत्तर नहीं दिया, बाबा ने कहा बेटा इतना अमूल्य शरीर, अमूल्य जन्म मिला है, ये पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए नहीं मिला है, बोले जन्म से मुक्त होने के लिए मिला है। ऐसे ऐसे प्रश्न और ऐसे ऐसे उत्तर देते थे बाबा। एक बार गंगा के किनारे महाराज श्री और बाबा बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, हाथ में बालू लेकर के बाबा जी बोल रहे थे, शांतनु जब तक इस बालू के एक एक कण में आत्म तत्व के दर्शन नहीं होते हैं, ब्रह्म तत्व के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक तुम अपने ज्ञान को पूरा नहीं समझना। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये बहुत गहरी बात है। मैंने आत्मा व्यापक है, आत्मा की व्यापकता तो इसी में है ना कि हम वह बालू के कण में भी हम हैं। वामदेव ब्रह्मज्ञानी वामदेव को ज्ञान हो गया, उपनिषदों में कहानी आती है, मां की पेट में ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो अंदर से बोलने लगे मनु रहम सूर्यश्च, मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं। ये क्या है? व्यापकता की अनुभूति है। ज्ञानी पुरुष आत्मे वेदम सर्वम, सब में आत्म तत्व के दर्शन करते हैं, और वो आत्म तत्व उनसे अलग नहीं होता है, वही आत्म तत्व जो स्वयं है। और इसीलिए आत्मा अविक्रियता की अनुभूति ज्ञानी को होती है, तो ज्ञानी के अंदर एक भाव उठता है कि मेरे को कहां जाना है, कहां आना है, क्योंकि जहां जाना है वहां भी मैं हूं, जिसको पाना है वो वस्तु भी मैं हूं। आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, और जहां जिस देश में जाना चाहते हैं वो आपको ऐसा मालूम पड़े वो भी मैं ही हूं। आपको हरिद्वार जाना है और आपको आत्मबोध हुआ, आपको लगने लगे कि हरिद्वार भी मैं ही हूं, तो उस समय आप जाओगे कैसे? बहुत मुश्किल है। एक ज्ञानी बैठे हैं और वो एक श्लोक बोला, उन्होंने बहुत सुंदर बोला, क्व गच्छामि कुत्र गच्छामि आत्मना पूरितम विश्व महाकल्पाम बुना यथा। दृष्टांत देके बोलते हैं कि जैसे कल्प का जल प्रलयकालीन, उसमें बारिश ही बारिश हो गई, चारों ओर बारिश, और जिधर बारिश नहीं होती उधर बारिश बहती है, जहां जल नहीं होता है वहां जल बहता है, ये जल का नियम है। लेकिन प्रलय काल में तो सर्वत्र जल ही जल हो गया, अब वो जल कहां बहेगा? अब बहने की जो क्रिया है वो समाप्त हो गई, जल ही जल है, चारों ओर जल। ऐसे वो ज्ञानी पुरुष कहता है आत्मना पूरितम विश्वम, ये संपूर्ण विश्व आत्मा हो गया, मेरी आत्मा हो गया, फिर मैं जाऊं कहां, आऊं कहां? माने वहां अक्रियता की अनुभूति है, वहां अक्रियत्व व्यापकत्वात अक्रियत्वम। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जब आपको व्यापकता की अनुभूति होती है तो वहां फिर अक्रियत्व की अपने आप अनुभूति परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। परम पूज्य मां आनंदमयी को किसी ने प्रार्थना की, मां आप विदेश क्यों नहीं जाती? और एक भक्त ने कहा कि आप जापान चले, मैं व्यवस्था करता हूं, आपके बहुत भक्त हैं वहां मानने वाले। मां ने एक छोटी सी बात बोली लेकिन बहुत गहरी। मां आनंदमय ने कहा कि बेटा यहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है, यहां तो करवट बदलने इतनी भी जगह खाली नहीं, कहां जाए? जापान? अब वो आदमी समझा कि नहीं समझा बात को, लेकिन बहुत गहरी बात बोली मां ने। मां ने कहा यहां तो इतनी जगह भी मेरे को छोड़ के नहीं है जहां मैं करवट बदल सकूं, इतनी भी जगह खाली नहीं, तो मैं जाऊं कहां? कहां जापान जाऊं मैं, कहां अमेरिका, यहां जाना आना कहां है? बहुत ही सुंदर बात मां ने एक छोटी सी बात में बोल दी। और साधक जब साधना करता है ना, तो उसके अंदर भी ये अनुभूतियां होती हैं। ज्ञानी पुरुष इन संपूर्ण अनुभूतियों का आधार होता है। अब यही बात अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन एक रस, और इसीलिए उसमें कोई क्रिया नहीं, और क्रिया का आधार न होने के कारण उसमें कोई विक्रिया नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, न मारना उसके अंदर है और न उसमें मरना है, न सड़ना गलना, बाहर के निमित्तों से उसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन हम नहीं कर सकते, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, तेज हो, आकाश वायु, इनका प्रभाव आत्म तत्व पर पड़ता नहीं। इसलिए भगवान ने आपको गीता जी में बता दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्रों से आघात करके आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जल से उसको गीला कर सड़ा कर मार नहीं सकते, उसको हवा से सुखा के नहीं मार सकते, अग्नि से जला के नहीं मार सकते। अब यहां इस श्लोक में आत्मा की व्यापकता का दिग्दर्शन कर रहे हैं। अणोरणियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। आत्मतत्व अणोहो अणियान महतो महियान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। ये हमारी अनुभूति आकार की अनुभूति है। हम किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा समझते हैं तो उसके आकार को लेकर के, और आकार का अर्थ है उस वस्तु की सीमा। जहां वस्तु की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से दूसरे वस्तु की सीमा शुरू हो जाती है, जहां दूसरे वस्तु की सीमा शुरू हो जाती है वहां दूसरे वस्तु का अस्तित्व हमारे दृष्टि का विषय बन जाता है। जहां दूसरे वस्तु का अस्तित्व होता है वहां पहले वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। ये अस्तित्व की परिसमाप्ति का इनाम सीमा है, माने जहां अस्तित्व समाप्त हो गया उसी को तो सीमा बोलते हैं। जहां तक भारत का अस्तित्व है बस वहीं तक भारत है, और वही उसकी सीमा है, उस सीमा के परे सीमा के बाद भारत नहीं है। ऐसे दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं उसकी एक सीमा है, उसका एक आकार है, उसके अस्तित्व की सीमा, उसके होने की सीमा, और उसकी सीमा जितनी होगी उतनी वो वस्तु है। आप जैसे परमाणु आप ले अणु, तो अणु में भी एक आकार है, उसकी उसका जो आकार है वो उसका अस्तित्व, और उसके बाहर फिर उसका अस्तित्व नहीं है। आप एक घड़े को ले ले, उसका एक आकार है, मकान को ले उसका एक आकार है, इस शरीर को ले ले इसका एक आकार है, और इस आकार के बाहर वो नहीं है, सीमित आकार। इसलिए आप अणु से लेके परमाणु से लेके जो अतिशयन अणु बहुत छोटा अणु हो अनियान, अब उस अणु में भी अणु से भी जो छोटा है, अब श्रुति बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, दुनिया की जितनी भी बहुत छोटी इकाइयां हैं उसको परमाणु बोला, नैयायिकों ने उसको परमाणु बोला है। नैयायिकों ने कहा आप विभाजन करो वस्तु का, और विभाजन करते 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 अंतिम अविभाज्य जो भौतिक पदार्थ का अंग है वो परमाणु है। स्थूल का विभाजन करते हुए आप तोड़ते 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 जाए और अंतिम हम उस अणु को तोड़ न पाए, अविभाज्य उसको परमाणु बोला है, और उस परमाणु को आप मिटा नहीं सकते न्यायिकों के दृष्टि से। पृथ्वी जल तेज वायु इन चार भूतों के परमाणु हुआ करते हैं, उसको अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, और यहां पर कहते हैं अणु हो अणियान, कितनी छोटी चीज है, अतीन्द्रिय मानते हैं उसको, हम उसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी, और उतनी छोटी चीज के अंदर भी वो है, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व यदि उसमें ना हो तो आपको उसको परिचिन्न मानना पड़ेगा, कितनी भी बड़ी चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, और वो एक जगह पर भी नहीं है तो उसको आपको परिचिन्न नहीं मानना पड़ेगा। परिचिन्न का अर्थ है उतने अंश में वो नहीं है, उसका अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए श्रुति कहती है कि इतनी छोटी जो स्थूल पदार्थ की अंतिम इकाई परमाणु, उसके अंदर भी वो तत्व है, इतना वो सूक्ष्म है, इतना वो छोटा है, ये उसकी व्यापकता है। अणु रनियान, और उसके अंदर है तो उसके बाहर है कि नहीं, वो तत्व अंदर है परमाणु के अंदर है तो परमाणु के बाहर है कि नहीं, हाँ वो बाहर भी है, और अंदर और बाहर के बीच में जो दीवार है उसके अंदर, अब वहां पर भी तो अंदर सूक्ष्म और उसके बाहर है, और दोनों के बीच जो दीवार है उसके अंदर भी होता है। परम पूज्य महाराज श्री ने दृष्टांत दिया सावा, अब भाष्य में भी आया सावा, आपको भी बीज को देखना, बीज सबसे छोटा बीज, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, सबसे बड़ा वृक्ष जो है वट वृक्ष, वट वृक्ष ही है हम लोगों के सामने पीपल, और सबसे छोटा जो बीज है वो किसका है, बहुत ये प्रकृति ईश्वरीय जो माया शक्ति अचिंत, इसलिए बोला है सबसे बड़ा पेड़ वट वृक्ष पीपल, और आप बीज को देखोगे तो सबसे छोटा है वो, सबसे छोटा है, सबसे छोटा, और उसमें यदि कटहल लगने लगते तो आदमी तो उसके नीचे जाता ही नहीं, सोचता कि ऊपर से गिरा तो नमो नमः। भगवान ने बड़े बड़े फल बनाए लेकिन वो सारे जमीन पर, आप कद्दू देखना जो आप वो खाते हैं ना, कौन सी सब्जी होती है, कोहड़ा, कोहड़ा होता है ना, कोहड़ा खाते ही नहीं आप लोग बम्बई के लोग खाते हैं ना, जब मैं बनारस में पढ़ता था या जब हम लोग रहते थे ऋषिकेश वगैरह में, तो मोदी भाई कोहड़े की सब्जी खाते थे हम लोग, क्योंकि सबसे सस्ती कोई सब्जी है और वो महीनों कोहड़ा, फिर कोहड़ा 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 कोहड़ा, और बोरी भर भर के हमारे कोठारी लोग जो बोरी भर भर के ले आते थे, बड़ी अच्छी लगती थी, कोई शिकायत नहीं है। अरे बहुत अच्छी है, लेकिन खाते नहीं हो। वो मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो अच्छी है। हाँ, मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो, बहुत अच्छी होती है। जब कोहरे का समय शुरू हो जाता है तो हम लोग समझ जाते कि अब तो, और बैंगन का समय आ गया तो फिर बैंगन ही बैंगन। अब इतना बड़ा कोहरा, बहुत बड़े बड़े कोहरे हो जाए, बड़े बड़े और वो पैदा कहाँ होते हैं? जमीन पर। और उसकी जो बेल है बहुत बड़ी नहीं होती है, उसकी बेल इतनी कमजोर कि आप पैर रखो तो टूट जाए। आप जूता पहन के घूम रहे हैं और उस कोहरे के डाल पर आपका पैर गिर जाए, टूट जाए। आप बंबई वाले ये ना समझे कि उसका झाड़ होता होगा बहुत बड़ा, उसकी बेल होती है और इतनी कोमल, इतनी कोमल, उसके ऊपर पैर रखो तो टूट जाए। और उससे जो फल पैदा होता है, अरे बहुत बड़ा कठोर, आप उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते, आपको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, काटना नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, इतना कठोर वो क्या प्रकृति। और आपका पेड़ इतना बड़ा पीपल का, और उसके बीज, उसका फल, अरे वो इतना कोमल कि ऊपर से नीचे गिरते फूट जाता है, वो इतना कोमल, ऊपर से गिरा और फूट जाता है। और उसके अंदर बीज ढूंढो आप, मिलेगा नहीं, इतना छोटा छोटा, इतना छोटा बीज। और उस छोटे बीज को भी आप खोल के देखोगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा इसके अंदर है क्या, मालूम पड़ेगा बीज कहाँ है, लेकिन वही बीज है जो पेड़ को पैदा करता है, वही बीज है। इतना छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आपको मालूम नहीं पड़े, और उसी के अंदर से पेड़ पैदा होता है। उसके अंदर भी चेतना है, उसके अंदर भी चेतन तत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अत्यंत सूक्ष्म जो बीज है, बीज अणु परमाणु, उसके अंदर भी मैं विराजता हूं, और उसके अंदर भी विराजकर उसको शक्ति प्रदान करता हूं, उसको अंकुरित करता हूं, उसको जीवन तत्व प्रदान करता हूं। ये स्वभाव है, ब्रह्म तत्व का स्वभाव। आप वेदांत में ब्रह्म की परिभाषा करते हैं, क्या करते हैं? बृहत्वात् ब्रह्म ऐसा करते हैं, बृहणत्वात् ब्रह्म। ये वेदांत भी बहुत मजेदार है। बृहत्वात् जो सबसे बृहत है वो ब्रह्म है, परमात्मा सबसे बृहत, महतो महियान। अच्छा, और बृहणत्वात् जो बढ़ता है, जो बढ़ रहा है, जो बढ़ता हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि ये जो आपका ब्रह्मांड है वो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, फैल रहा है। और ये कब तक फैलेगा, और ये कब से शुरू हुआ ये फैलने की प्रक्रिया, इसका कोई आदि और इसका अंत, ये कब तक फैलेगा? और वेदांत ने हजारों साल पहले बोल दिया, अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि। ये जो संसार है, संसार के लिए भी बोला है और ब्रह्म के लिए भी बोला है। ये संसार जो अनादि है, छह अनादि बोलते हैं ना वेदांत, ये संसार कब से पैदा हुआ, इसका आरंभ कब से हुआ, बता सकते हैं? मुश्किल है। ये कब से पैदा हुआ, इसका आरंभ कब हुआ, बहुत मुश्किल है, बताना ही मुश्किल। अरे अनादि, इसका आदि कहना ही मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र ने कहा अनादि है, अनादि। और बात भी सही, आदि कौन सा आदि, यहां से शुरू हुआ, कैसे बताएं? और बड़ी साफ बात बोली है, बहुत साफ बात बोली। हमारे मनुष्यों ने बहुत चिंतन किया, बहुत चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद मनुष्यों ने सोचा कि जगत के अंदर पैदा हुआ आदमी और वो लाखों वर्ष बाद में पैदा हुआ आदमी, वो कैसे जान सकता है कि लाखों वर्ष पहले जगत कैसे भगवान ने बनाया? बात तो सही है कि नहीं? और हम लोग विचार कर रहे हैं। अच्छा, आप कैसे पैदा हुए आप बता सकते हो?